गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कहानी दादी अम्मा का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना घर की मालकिन मेहरा अपने हरे भरे परिवार को देखती है और सुख में भीग जाती है। यह पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज उसका मन भरा है। सास ने भाप कर प्यार बरसाया था, बहू अपने को थकाओ मत, जो सहज सहज कर सको करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। आज घर में 3 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, ब्याह देने योग्य 2 बेटियां हैं। आज तो वह तीखी निगाह वाली मालकिन बच्चों की दादी अम्मा बनकर रह गई है। मेहरा पति के निकट खड़ी होकर कह देती है, अम्मा नाहक बापू के पीछे पड़ी रहती हैं। बहु बेटियों वाला घर है, क्या यह अच्छा लगता है? लेकिन प्रयत्न करने पर भी वह कभी पति को कुछ कह देने तक खींच नहीं पाई। और अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती हैं, झगड़ती हैं। बड़ा पोता काम पर जा रहा है, दादी अम्मा पास आ खड़ी हुई, एक बार ऊपर तले देखा और बोली, काम पर जा रहे हो बेटे, कभी दादा की ओर भी देख लिया करो, कब से उनका जी अच्छा नहीं। बेटा दादी अम्मा की नजर बचाता है। मेहरा मंझली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो, लड़का बहु बेटों वाला है तो क्या उस पर तुम इस तरह बरसती रहोगी? दादी अम्मा ने जलकर कहा, क्यों नहीं बहू, अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना होगा। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से पग उठाती अपने कमरे की ओर चल दी। अभी कुछ महीने हुए, यही छोटा बेटा माथे पर फूलों का सहरा लगाकर ब्याहने गया था। कोई पास पड़ोसिन उसे बधाई दे रही थी, बधाई हो अम्मा, सोने सी बहू आई है, शुक्र है उस मालिक का, तुमने अपने हाथों छोटे पोते का भी काज सवारा। मेहरा बहू पर आशीर्वाद बरसाकर लौटी तो देहरी के संग लगी दादी अम्मा को देखकर स्नेह जताकर बोली, आओ अम्मा, शुक्र है भगवान का, आज ऐसी मीठी घड़ी आई। उस दिन अपनी चारपाई पर लेटकर दादी अम्मा सोई नहीं, आंखों में ना ऊंघ थी ना नींद। एक दिन वह भी दुल्हन बनी थी, बूढ़ी फूफी ने सजाकर उसे भी पति के पास भेजा था, तब क्या उसने यह कोठरी देखी थी? आज तो दादी अम्मा स्वयं फूफी बनकर इस कोठरी में पड़ी है। मेहरा तो कुछ ना कुछ कहकर चोट करने से भी नहीं चूकती। लड़ने को तो दादी भी कम नहीं, पर अब तीखा तेज बोल लेने पर जैसे वह थककर चूर चूर हो जाती है, बोले बिना रहा भी नहीं जाता। फिर सोचती है कि वह उनसे क्यों माथा पच्ची करती है जिनको उसकी परवाह नहीं। अब आगे, मेहरा की तो अब चाल ढाल ही बदल गई है। अब वह उसकी बहू नहीं, 3 बहुओं की सास है। ठहरी हुई गंभीरता से घर का शासन चलाती है। दादी अम्मा का बेटा अब अधिक दौड़ धूप नहीं करता, देखरेख से अधिक अब बहुओं द्वारा ससुर का आदर मान ही अधिक होता है। कभी अंदर बाहर जाते अम्मा मिल जाती है तो झुककर बेटा माँ को प्रणाम अवश्य करता है। दादी अम्मा गर्दन हिलाती हिलाती आशीर्वाद देती है, जियो बेटा जियो। कभी मेहरा की जलीकटी बातें सोच बेटे पर क्रोध और अभिमान करने को मन होता है, पर बेटे को पास देखकर दादी अम्मा सब भूल जाती है। ममता भरी पुरानी आंखों से निहार कर बार बार आशीर्वाद बरसाती चली जाती है, सुख पाओ, भगवान बड़ी उम्र दे। कितना गंभीर और शीलवान है उसका बेटा, है तो उसका ना। पोतों को ही देखो, कभी झुककर दादा के पांव तक नहीं छूते, आखिर माँ का असर कैसे जाएगा। इन दिनों बहू की बात सोचते ही दादी अम्मा को लगता है कि अब मेहरा उसके बेटे में नहीं अपने बेटों में लगी रहती है। दादी अम्मा को वे दिन भूल जाते हैं जब बेटे के ब्याह के बाद बहू बेटे के लाड़ चाव में उसे पति के खाने पीने की सुधी तक न रहती थी, और जब लाख लाख शुक्र करने पर पहली बार मेहरा की गोद भरने वाली थी तो दादी अम्मा ने आकर दादा से कहा था, बहू के लिए अब यह कमरा खाली करना होगा, हम लोग फूफी के कमरे में जा रहेंगे। दादा ने एक भरपूर नजरों से दादी अम्मा की ओर देखा था, जैसे वह बीत गए वर्षों को अपनी दृष्टि से टटोलना चाहते हो। फिर सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा था, क्या बेटे वाला कमरा बहू के लिए ठीक नहीं? नाहक क्यों यह सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो? दादी अम्मा ने हाथ हिलाकर कहा, ओहो तुम समझोगे भी? बेटे के कमरे में बहू को रखूंगी तो बेटा कहाँ जाएगा? उल्टे सीधे की फिक्र तुम क्यों करते हो, मैं सब ठीक कर लूंगी। और पत्नी के चले जाने पर दादा बहुत देर बैठे बैठे भारी मन से सोचते रहे कि जिन वर्षों का बीतना उन्होंने आज तक नहीं जाना, उन्हीं पर पत्नी की आशा विराम बनकर आज खड़ी हो गई है। आज सचमुच ही उसे इस उलटफेर की परवाह नहीं। इस कमरे में बड़ी फूफी उनकी दुल्हन को छोड़ गई थी, उस कमरे को छोड़कर आज वह फूफी के कमरे में जा रहे हैं। क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए उन्हें बेटे से ईर्ष्या हुई और उदासीनता में बदल गई। और पहली रात जब वह फूफी के कमरे में सोए तो देर गए तक भी पत्नी बहू के पास से नहीं लौटी थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उनकी पलकें झपी तो उन्हें लगा कि उनके पास पत्नी का नहीं फूफी का हाथ है। दूसरे दिन मेहरा की गोद भरी थी, बेटा हुआ था। घर की मालकिन पति की बात जानने के लिए बहुत अधिक व्यस्त थी। कुछ दिन से दादी अम्मा का जी अच्छा नहीं, दादा देखते हैं पर बुढ़ापे की बीमारी से कोई दूसरी बीमारी बड़ी नहीं होती। दादी अम्मा बार बार करवट बदलती है और फिर कुछ कुछ देर के लिए हाफ कर पड़ी रहती है। दो एक दिन से वह रसोई घर की ओर भी नहीं आई, जहां मेहरा का आधिपत्य रहते हुए भी वह कुछ ना कुछ नौकरों को सुनाने में चूकती नहीं है। आज दादी को ना देखकर छोटी बेटी हंसकर मंजरी भाभी से बोली, भाभी दादी अम्मा के पास अब शायद कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं रह गई, नहीं तो अब तक कई बार चक्कर लगाती। दोपहर को नौकर जब अम्मा के यहां से अनछुई थाली उठा लाया तो मेहरा का माथा ठनका। अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा कुछ खा लिया होता, क्या जी अच्छा नहीं? एकाएक अम्मा कुछ बोली नहीं, क्षण भर रुककर आंखें खोली और मेहरा को देखती रह गई। खाने को मन ना हो तो अम्मा दूध ही पी लो। अम्मा ने हाँ ना कुछ नहीं की, ना पलके ही झपकी। इस दृष्टि से मेहरा बहुत वर्षों के बाद आज फिर डरी। इनमें ना क्रोध था, ना सास की तरेर थी, ना मनमुटाव था। एक लंबा गहरा उल्हाना पहचानते मेहरा को देर नहीं लगी। डरते डरते सास के माथे को छुआ, ठंडे पसीने से भीगा था। पास बैठकर धीरे से स्नेह भरे स्वर में बोली, अम्मा जो कहो बना लाती हूँ। अम्मा ने सिरहाने पर पड़े पड़े सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं, और बहू के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मेहरा पल भर कुछ सोचती रही और बिना आहट किए बाहर हो गई। बड़ी बहू के पास जाकर चिंतित स्वर में बोली, बहू अम्मा कुछ अधिक बीमार लगती हैं, तुम जाकर पास बैठो तो मैं कुछ बना लाऊं। बहू ने सास की आवाज में आज पहली बार दादी अम्मा के लिए घबराहट देखी। दबे पांव जाकर अम्मा के पास बैठ हाथ पांव दबाने लगी। अम्मा ने इस बार हाथ नहीं खींचे, ढीली सी लेटी रही। मेहरा ने रसोई घर में जाकर दूध गर्म किया, औटाने लगी तो एकाएक हाथ अटक गया। क्या अम्मा के लिए यह अंतिम बार दूध लिए जा रही है? दादी अम्मा ने बेखबरी में दो चार घूंट दूध पीकर छोड़ दिया। चारपाई पर पड़ी अम्मा चारपाई के साथ लगी दिखती थी। कमरे में कुछ अधिक सामान नहीं था। सामने के कोने में दादा का बिछौना बिछा था। शाम को दादा आए तो अम्मा के पास बहू और पतोहू को बैठे देख पूछा, अम्मा तुम्हारी रूठ कर लेटी हैं या? मेहरा ने अम्मा की बाह आगे कर दी। दादा ने छूकर हौले से कहा, जाओ बहू, बेटा आता ही होगा, उसे डॉक्टर को लिवाने भेज देना। मेहरा ससुर के शब्दों की गंभीरता जानते हुए चुपचाप बाहर हो गई। बेटे के साथ जब डॉक्टर आया तो दादी अम्मा के तीनों पोते भी वापस आ खड़े हुए। डॉक्टर ने सधे सधाए हाथों से दादी की परीक्षा की। जाते जाते दादी के बेटे से कहा, कुछ ही घंटे और। मेहरा ने बहुओं को धीमे स्वर में आज्ञाएं दी और बेटों से बोली, बारी बारी से खा पी लो, फिर पिता और दादा को भेज देना। अम्मा के पास से हटने की पिता और दादा की बारी नहीं आई उस रात। दादी ने बहुत जल्दी की, डूबते डूबते हाथ पांवों से छटपटाकर एक बार आंखें खोली और बेटे और पति के आगे बाहें फैला दी, जैसे कहती हूँ, मुझे तुम पकड़ रखो। दादी का श्वास उखड़ा, दादा का कंठ जकड़ा और बेटे ने माँ पर झुककर पुकारा, अम्मा अम्मा। सुन रही हूँ बेटा, तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ। मेहरा सास की ओर बढ़ी और ठंडे हो रहे पैरों को छूकर याचना भरी दृष्टि से दादी अम्मा को बिछुरती आंखों से देखने लगी। बहू को रोते देख अम्मा की आंखों में क्षण भर को संतोष झलका, फिर वर्षों की लड़ाई झगड़े का आभास उभरा। द्वार से लगी तीनों पोतों की बहुएं खड़ी थीं। मेहरा ने हाथ से संकेत किया, बारी बारी दादी अम्मा के निकट तीनों झुकी। अम्मा की पुतलियों में जीवन भर का मुंह उतर गया। मेहरा से उलझा कड़वापन ढीला हो गया। चाहा कि कुछ कहे, कुछ, पर छूटते तन से दादी अम्मा होठों पर कोई शब्द नहीं खींच पाई। अम्मा, बहुओं को आशीष देती जाओ, मेहरा के गीले कंठ में आग्रह था, विनय थी। अम्मा ने आंखों के झिलमिलाते पर्दे में से अपने पूरे परिवार की ओर देखा। बेटा, बहू, पति, पोते, पतोहू, पोतियां, छोटी पतोहू की गुलाबी ओढ़नी जैसे दादी के तन मन पर बिखर गई। उस ओढ़नी से लगे गोरे गोरे लाल लाल बच्चे हंसते खेलते भोली किलकारियां। दादी अम्मा की धुंधली आंखों में से और सब मिट गया, सब कुछ गया, केवल ढेर से अगणित बच्चे खेलते रह गए, उसके पोते, उसके बच्चे। पिता और पुत्र ने एक साथ देखा, अम्मा जैसे हल्के से हंसी, हल्के से। मेहरा को लगा अम्मा बिल्कुल वैसे हंस रही हैं जैसे पहली बार बड़े बेटे के जन्म पर वह उसे देखकर हंसी थी। समझ गई, बहुओं को आशीर्वाद मिल गया। दादा ने अपने सिकुड़े हाथ में दादी का हाथ लेकर आंखों से लगाया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। रात बीत जाने से पहले दादी अम्मा बीत गईं। अपने भरे पूरे परिवार के बीच वह अपने पति, बेटे और पोतों के हाथों में अंतिम बार घर से उठ गईं। दाह संस्कार हुआ और दादी अम्मा की पुरानी देह फूल हो गई। देखने सुनने वाले बोले, भाग्य हो तो ऐसा फलता फूलता परिवार। मेहरा ने उदास उदास मन से सबके लिए नहाने का सामान जुटाया, घर बाहर धुलाया। नाते रिश्तेदार, पास पड़ोसी अब तक लौट गए थे। मौत के बाद रूखी सहमी सी दोपहर, अनचाहे मन से कुछ खा पीकर घरवाले चुपचाप खाली हो बैठे। अम्मा चली गई पर परिवार भरा पूरा है। पोते थककर अपने अपने कमरों में जा लेटे, बहुएं उठने से पहले सास की आज्ञा पाने को बैठी रहीं। दादी अम्मा का बेटा निढाल होकर कमरे में जा लेटा। अम्मा की खाली कोठरी का ध्यान आते ही मन बह आया, कल तक अम्मा थी तो सही उस कोठरी में। रुआसी आंखें बरस कर झुक आई तो सपने में देखा, नदी किनारे घाट पर अम्मा खड़ी हैं। अपनी चिता को जलते देख कहती है, जाओ बेटा, दिन ढलने को आया, अब घर लौट चलो, बहू राह देख रही होगी, जरा संभल कर जाना। बहू से कहना बेटियों को अच्छे ठिकाने लगाए। दृश्य बदला, अम्मा द्वार पर खड़ी हैं, झाँक कर उसकी ओर देखती हैं। बेटा, अच्छी तरह से कपड़ा ओढ़कर सो। हाँ बेटा, उठो तो कोठरी में बापू को मिलाओ, यह बिछो उनसे ना झेला जाएगा। बेटा, बापू को देखते रहना, तुम्हारे बापू ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसे अंत तक निभाया पर मैं ही छोड़ चली। बेटे ने हड़बड़ा कर आंखें खोली, कई क्षण द्वार की ओर देखते रह गए। अब कहाँ आएगी अम्मा इस देहरी पर। बिना आहट किए मेहरा आई, रोशनी की, चेहरे पर अम्मा की याद नहीं, अम्मा का दुख था। पति को देखकर जरा सी रोई और बोली, जाकर ससुर जी को तो देखो, पानी तक मुंह नहीं लगाया। पति खिड़की में से कहीं दूर देखते रहे, जैसे देखने के साथ कुछ सुन रहे हो। बेटा, बापू को देखते रहना, तुम्हारे बापू ने तो अंत तक संग निभाया पर मैं ही छोड़ चली। उठो, मेरा कपड़ा खींचकर पति के पीछे होली। अम्मा की कोठरी में अंधेरा था, बापू उसी कोठरी के कोने में अपनी चारपाई पर बैठे थे। नजर दादी अम्मा की चारपाई वाली खाली जगह पर गड़ी थी। बेटे को आया जान हिले नहीं। बापू, उठो, चलकर बच्चों में बैठो, जी संभलेगा। बापू ने सिर हिला दिया। मेहरा और बेटे की बात बापू को मानो सुनाई ही नहीं दी, पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठे रहे। बहू बेटा, बेटे की माँ, खाली दीवारों पर अम्मा की तस्वीरें ऊपर नीचे होती रहीं। द्वार पर अम्मा घूंघट निकाले खड़ी है, बापू को अंदर आते देख शर्माती है और बुआ की ओट हो जाती है। बुआ स्नेह से हंसती है, पीठ पर हाथ फेर कर कहती है, बहू, मेरे बेटे से कब तक शर्माओगी। अम्मा बेटे को गोद में लिए दूध पिला रही है। बापू घूम फिर कर पास आ खड़े होते हैं, तेवर चढ़े, तीखे बोलों को फीका बनाकर कहते हैं, मेरी देखरेख अब सब भूल गई हो, मेरे कपड़े कहाँ डाल दिए। अम्मा बेटे के सिर को सहलाते सहलाते मुस्कुराती है, फिर बापू की आंखों में भरपूर देखकर कहती है, अपने ही बेटे से प्यार का बंटवारा कर झुंझलाने लगे। बापू इस बार झुंझलाते नहीं, झिझकते हैं, फिर एकाएक दूध पीते बेटे को अम्मा से लेकर चूम लेते हैं। मुन्ने के पतले नर्म ओठों पर दूध की बूंद अब भी चमक रही है। बापू अंधेरे में अपनी आंखों पर हाथ फेरते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं। उनके बेटे की माँ आज नहीं रही। तीनों बेटे दबे पांव जाकर दादा को झांक आए। बहुएं सास की आज्ञा पा अपने अपने कमरों में जा लेटी। बेटियों को सोता जान मेहरा पति के पास आई तो सिर दबाते दबाते प्यार से बोली, अब हौसला करो। लेकिन एकाएक किसी की गहरी सिसकी सुन चौंक पड़ी। पति पर झुककर बोली, बापू की आवाज लगती है, देखो तो। बेटे ने जाकर बाहर वाला द्वार खोला, पीपल से लगी झुकी सी छाया। बेटे ने कहना चाहा, बापू, पर बैठे गले से आवाज निकली नहीं। हवा में पत्ते खड़खड़ाए, टहनियां हिली और बापू खड़े खड़े सिसकते रहे। बापू, इस बार बापू के कानों में बड़े पोते की आवाज आई। सिर ऊंचा किया तो तीनों बेटों के साथ देहरी पर झुकी मेहरा दिख पड़ी। आंसुओं के गीले पूर में से धुंध बह गई। मेहरा अब घर की बहू नहीं, घर की अम्मा लगती है। बड़े बेटे का हाथ पकड़कर बापू के निकट आई, झुककर गहरे स्नेह से बोली, बापू, अपने इन बेटों की ओर देखो, यह सब अम्मा का ही तो प्रताप है। महीने भर के बाद बड़ी बहू की झोली भरेगी, अम्मा का परिवार और फूले फलेगा। बापू ने इस बार सिसकी नहीं भरी, आंसुओं को खुले बह जाने दिया। पेड़ के कड़े तने से हाथ उठाते उठाते सोचा, दूर तक धरती में बैठी अगणित जड़े अंदर ही अंदर इस बड़े पुराने पीपल को थामे हुए हैं। दादी अम्मा इसे नित्य पानी दिया करती थी, आज वह भी धरती में समा गई है। उसके तन से ही तो बेटे पोते का यह परिवार फैला है। पीपल की घनी छाह की तरह यह और फैलेगा। बहू सच कहती है, यह सब अम्मा का ही प्रताप है। वह मरी नहीं, वह तो अपनी देह पर के कपड़े बदल गई है। अब वह बहू में जिएगी, फिर बहू की बहू में। गाथा में अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कहानी दादी अम्मा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।